नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी जाता है। इस जीवन रूपी सफर में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। अगर आपका दुख रूपी झूला पीछे चला गया है तो घबराइए नहीं, ये आगे भी जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से कि राजयोग से हमारे जीवन का विकास कैसे होता है। अगर जीवन में कोई ऐसा घटना घट गई हो, कोई ऐसा दाग लग गया हो, उस पर संपूर्ण विजय कैसे पाए, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में रोज की भांति ब्रह्मा कुमार सूरी भाई जी, गीता बहन जी और विशेष अतिथि के रूप में दीपम भाई उपस्थित हैं। आइए आप तीनों का स्वागत करते हैं। सूरी भाई जी, दीपम भाई, गीता बहन जी, आप तीनों का हार्दिक स्वागत है। ये जीवन है, ये यात्रा है, लेकिन कभी कभी कुछ घटना का प्रभाव हमारे मानस पटल पर रहता है। आपने बताया कि कई बार उस पर विजय पाया जा सकता है, लेकिन कभी कभी हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि कई बार उस घटना का प्रभाव इतना ज्यादा होता है, उसका विकास रुक जाता है, या हम देखते हैं कि वो मायूस हो जाता है। आखिर जिसके साथ भी ऐसा घटना घटी हो, चाहे छोटी चाहे बड़ी, उस पर कैसे उस पर निजात पाए और आगे निकल जाए।
ये जो अध्यात्म का मार्ग है, राजयोग का मार्ग है, ये हमारे विचारों को लिबरल कर देता है, महान बना देता है, थोड़ा खुला दृष्टिकोण कर देता है। जो एक नैरो माइंडेडनेस रहती है ना, बहुत छोटे विचार, सीमित विचार, एक घेरे में बंधे हुए विचार, वो रोडनेस में आ जाते हैं। मुझे कुछ उदाहरण याद आ रहे थे जो प्रैक्टिकल में केसेज हमारे सामने आते हैं। किसी की शादी हुई थी, 2-3 साल हो गए, जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत प्यार था। प्यार में एक दिन लड़की ने अपने पति को बता दिया कि शादी से पहले मेरे से ये गलती हो गई थी। अब देखिए, प्यार के कारण उसने बताया, प्यार में कोई बात चित्त पे रखी नहीं जाती, लेकिन उसके पति ने उन बातों को चित्त पे रख लिया। अच्छा, तुम ऐसी थी। और हुआ ये कि उस दिन से उनके जीवन का सफर क्लिष्टता से
भर गया। मैं बीच में थोड़ा सा बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए?
हाँ, इस पे ही मैं आ रहा हूँ। अभी वो व्यक्ति उसको रोज जब भी कोई बात हो याद दिलाता, तुम तो ऐसी हो, तुम ऐसी थी पहले भी, मैं समझ गया तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे रहे होंगे, सभी तुम्हारे परिवार में ऐसे ही होंगे। तो इसमें क्या हुआ, जब मैंने भी ये बात सुनी, उनका बड़ा कोई मेरे पास आया कि देखो, हमें बहू से बहुत प्यार है और बेटा तो हमारा है ही, हम इस छोटी सी बात को समाप्त करना चाहते हैं। तो मैं सोचने लगा कि लोग कहा करते हैं, विद्वानों ने कहा, स्कॉलर्स ने कहा कि भाई अपनी कोई बात सच्चाई से बता दी जाए, छुपाया ना जाए कुछ। तो क्या सचमुच बताने का दुष्परिणाम होता है? वो छुपाए बैठी रहती तो उनका प्यार दिनों दिन बढ़ता जाता, लेकिन प्यार में ही उसने उस सब
अपना पल समझ करके हाँ, उसने अपनी बात।
तो मुझे लगा कि समय अनुसार हमें कौन सी बात किसको और कब बतानी है, और किन चीजों को समा देना है। मैं छुपाना नहीं कहूंगा, पर भुला दें, समा दें हर चीज को। यदि हम डिक्लेयर करेंगे तो शायद जीवन की यात्रा दूभर इसी तरह हो जाएगी। साथ में मैं ये भी कहूंगा कि दूसरे व्यक्ति को भी बहुत विचारों का धनी होना चाहिए कि अगर उसने बताया तो उसको और ज्यादा प्यार करना चाहिए था कि अच्छा, तुम्हारा चित्त इतना निर्मल है, कोई बात नहीं, जो पास्ट हो गया वो तो हो गया, अब हमारी जीवन की यात्रा बहुत सुंदर चल रही है, उसको भूल जाओ तुम भी। तो देखिए उनके जीवन में कितना अपनापन रहता। और मैं सबको कहना चाहूंगा, आज के युवक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर ही रहे हैं। मुश्किल से 1% युवक ऐसे बचते होंगे जो गलती ना करते हों। इसलिए या तो उन्हें संभालें, और यदि बताना है तो एक दूसरे को हल्का कर दें, उन चीजों को भुला दें और अपने जीवन की यात्रा का आनंद लें।
बहुत सुंदर भाई साहब ने बताया कि उस चीजों को हम कहां बताएं, किस जगह बताएं और कितना बताएं। कई बार आदमी बता करके हल्का हो जाता है, लेकिन ये सोच करके नहीं बताता कि ये गलत अर्थ इसका लेगा। कई बार आदमी चलो भाई इनको बता देता हूँ, अपनापन है मेरे को, इनसे प्यार है, तो अपनी बात रख देता है। लेकिन जैसे बताया कि कई बार उसका नाजायज फायदा हो जाता है, क्या करें आखिर, बताएं कि नहीं बताएं, और फिर वो बताएं तो कितना बताएं।
वो तो जब हम रिलेशन में आते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध संपर्क में आते हैं, नेचर वाइज उसके व्यवहार को देख करके हमें इतना तो पता चल ही जाता है कि हमारी कुछ बातें बताने से क्या फर्क होगा, वो समा पाएंगे, समझ पाएंगे, उसे हजम कर पाएंगे या नहीं। वो तो हर एक का इंडिपेंडेंटली कुछ अपना वो होता है रवैया, क्योंकि वो पर्सनली होता है,
एक दूसरे को समझ करके
उसमें हम कह दें कि बता दें, अब दूसरे की नेचर बिल्कुल अलग हो, उसको उसकी बहुत बड़ी भरपाई करनी पड़े, तो इससे बेटर है कि अगर हमारी एक यात्रा बहुत सुखद चल रही है तो हम पास्ट के पन्ने क्यों पलट के देखें। जो बीत गया वो बीत गया, उन बातों की अब हमारी लाइफ में कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है, उन्हें हमें याद करना भी नहीं चाहिए। जो बीत गया वो बीत गया, अभी मेरी दूसरी लाइन है, मैं उस लाइन पर चलो। और वैसे भी देखें, यदि हम बार बार पीछे मुड़ के देखते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे तो क्या होगा। बार बार हम पीछे मुड़ के देख रहे हैं और आगे चलते जा रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ठोकर लगेगी। तो जो अच्छी चीजें हैं, किसी के दिल को सम्मान देने वाली बातें हैं, सुख देने वाली बातें हैं, सुखदायी यादें हैं, वो हम जरूर शेयर करें। लेकिन लगता है कि कहीं इमोशनली कुछ गलत हो सकता है, कुछ गिल्टी फील हो सकती है या कुछ दूरियां आ सकती हैं, तो उन बातों को भूल जाने में ही फायदा है।
जी जी,
वो नहीं बतानी चाहिए।
जी जी, इपम भाई आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप PhD कर रहे हैं, आपने बताया कि मुझे बाल्यकाल से ही राजयोग के बारे में पता चला, और उसके पहले आपके मन में क्या क्या विचार चलते थे, आपके संस्कार क्या थे, और आपने उसको कैसे परिवर्तन किया?
उसके लिए ऐसे है कि जब हम राजयोग अभ्यास नहीं करते थे तो उससे पहले हमें क्रोध बहुत आता था
जी,
मतलब छोटी छोटी बात में गुस्से हो जाना, मम्मा ने सब्जी अच्छी नहीं बनाई तो आके उनको डांटना, तो ऐसे कई बातों में हम इरिटेशन, चिड़चिड़ापन बहुत था। लेकिन जैसे जैसे मेडिटेशन करना शुरू किया तो बेसिकली राजयोग से क्या होता है कि हमारे विचारों के अंदर गैप बढ़ने लगता है।
अच्छा।
जब विचारों के अंदर गैप बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ थॉट्स कम होती है और क्वालिटी बढ़ने लगती है, तो क्वालिटी के कारण मन पीस में रहना शुरू हो गया, मन शांत होना शुरू हो गया, जिसके कारण क्रोध धीरे धीरे जीवन से बाहर जाने लगा।
दीपम भाई, जैसे आप कॉलेज में पढ़ाते हैं, आपके सामने बहुत सारे बच्चे रहते हैं, आपने जैसे बताया कि राज्यों के माध्यम से मेरा क्रोध शांत हो गया, मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, लेकिन बच्चे अगर मान लो गलत कर रहे हैं या बच्चों पर कभी गुस्सा आने का ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए, ऐसी कोई नौबत आ जाए, तब आप क्या करते हैं?
इसके लिए क्या होता है, जब हम अपनी वही बात सेल्फ एस्टीम में रह करके सामने वाले को कोई शिक्षा देते हैं या कोई बात कहते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि स्नेह ऐसी शक्ति है या कहें प्यार ऐसी शक्ति है जो सामने वाले के हृदय को पिघला देती है। लेकिन इसमें हमें एक चीज ऐड करनी है कि जब हम बात कह रहे हैं तो साथ साथ हमारी जो इंटेलेक्चुअल पावर है, जो हमारी भावना है, वो शुद्ध होनी चाहिए। कई बार हम बात कहते तो हैं, कहते कुछ हैं और अंदर कुछ और होता है, तो अगर हम शुभ भावना से किसी को अपनी सम्मान में रह के कहते हैं तो सामने वाला उसे सचमुच रिस्पेक्ट देता है, और जो मैं प्रैक्टिकल अनुभव करता हूँ।
आजकल जनरली हम देखते हैं टीचर लोगों के मन में भी ऐसा है, बहुत सारे टीचर होंगे, मैं मानता हूँ कि बहुत शांत भी रहते हैं, लेकिन आम ये बातें हैं कि जब तक हम बच्चों पर क्रोध नहीं करेंगे, जब तक उनको डांटेंगे नहीं, जब तक उनको फटकारेंगे नहीं, तब तक वो शांत नहीं होगा या हमारा कहना नहीं मानेगा। आपका क्या विचार है इस पर?
जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हम अक्सर ये देखते हैं कि टीचर क्लास को शांत करने के लिए खुद शोर करता है, जैसे हम आप सभी जानते हैं स्कूल में पढ़ते हैं टीचर डस्टर मारते हैं टेबल पे ताकि क्लास शांत हो जाए, हम खुद शोर कर रहे हैं, क्लास शांत कैसे हो सकती है। तो जब हम पहले क्रोध करते थे स्टूडेंट्स के ऊपर या पहले कुछ भी हमारे अंदर थोड़ा बहुत इधर उधर होता था तो उससे इतना इफेक्ट नहीं आता था, क्योंकि पावर नहीं है ना, शब्द काम नहीं करते हैं, शब्द के बैकग्राउंड हमारी अंदर की भावना क्या है वो ज्यादा काम करती है। इसलिए जब राजयोग के अभ्यास से मन शांत हो गया, इनफैक्ट चित्त शांत हो गया, तो उससे हमारे वाइब्रेशंस फैलते हैं और सामने वाला उस चीज की रिस्पेक्ट करता है।
मैं जब पढ़ाई करता था तो उस समय हमारे दो प्रकार के टीचर थे, एक टीचर बहुत शांत कुछ नहीं बोलते थे, जब वो आते थे तो हम हल्ला करते थे, हमको लगता था ये कुछ करने वाला नहीं है, ये तो शांत है, लेकिन एक टीचर ऐसे थे जो बहुत आते ही डंडा लेकर के कौन हल्ला कर रहा था उनकी पिटाई उनका, तो पहले से हम समझ जाते थे ये टीचर बहुत गुस्सा करता है, ये तो मारेगा करके, तो हम शांत हो जाते थे। जैसे आप बता रहे कि मैं अगर शांत हूँ, मेरा विचार शांत है, या टीचर लोगों को बच्चों को पता है स्टूडेंट को कि हमारा ये टीचर शांत है, तो क्या उसका इन एडवांटेज नहीं लेते हैं बच्चे, उसका नजायज फायदा नहीं उठाते?
वो स्टार्टिंग में हो सकता है कि कुछ समय स्टूडेंट उसको ले, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल में वो डेली अपनी लाइफ में उसको मेंटेन रखते हैं, इसके साथ हमारा स्टडी वे भी इम्पोर्टेंट होता है। आप लेक्चर कैसा देते हैं, अगर आप नॉलेजफुल बन के लेक्चर देते हैं, अपना सब्जेक्ट को अच्छी तरह डील करते हैं, फिर आप अपनी शांति को मेंटेन रखते हैं, फिर सचमुच स्टूडेंट आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं देखता हूँ जब स्टूडेंट हम क्लास में मैं एंटर होता हूँ तो बहुत रिस्पेक्ट से खड़े होते हैं और बहुत प्यार से बात करते हैं, क्योंकि हमारी नेचर का प्रभाव ज्यादा पड़ता है।
जी जी,
क्योंकि ओरिजिनल तो हम सब वही है ना, लेकिन जब स्टूडेंट भी है वो है तो बच्चे ना, तो बच्चा जब होता है तो गुस्सा करते थोड़ी पैदा होता है ना, वो शांत होता है, बल्कि उसको देख करके भी सब क्या होते हैं, शांत होते हैं। तो मेरी रीजनल नेचर तो वही है, लेकिन उसने आजकल की सोसाइटी के संस्कारों ने उसे हिडन कर दिया, तो इसलिए हमें अपनी रीजनल नेचर में अगर हम रहते हैं तो उसका रिजल्ट ज्यादा आते हैं।
एक अच्छी बात आपने बताया कि एक तो हमको शांत रहना है, प्लस दूसरी बात हमें हमारी भावना अच्छी हो। फिर आपने बताया कि हम रिसर्च करते हैं, तो किस बात के ऊपर रिसर्च करते हैं, आप थोड़ा बताइए।
इसमें रिसर्च हमने जब एमटेक हमने किया तो उसमें हमने कुछ रिसर्च वर्क करके थीसिस सबमिट करना होता है
जी।
तो उसमें हमने क्या किया, हमने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट परमात्मा की ब्लेसिंग से हमने बनाया जो दुनिया में 1.5 लाख का है, वो हमने 6,000 रुपए में बनाया।
अच्छा, क्या
वो इंस्ट्रूमेंट क्या था कि जो मशीन होती है उसकी कंडीशन मॉनिटरिंग करनी होती है। जैसे हमें बुखार हो गया तो हम थर्मोमीटर लगा के चेक करते हैं कि कितना बुखार है, ऐसे मशीन को मेंटेनेंस चाहिए, रिपेयर चाहिए, तो वो चेकिंग हम लोग उसको कंडीशन मॉनिटरिंग बोलते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो दुनिया में 1.5 लाख रुपए का
जी,
है
जी,
और वो कॉन्टैक्ट टाइप है, उसको मशीन पे लगाना पड़ता है, और हमने जो बनाया वो नॉन कॉन्टैक्ट बनाया, उसको हम लेजर से यूज करके उसकी वाइब्रेशन को मेजर करके बता सकते हैं कि वो मशीन को मेंटेनेंस चाहिए या नहीं चाहिए।
नहीं, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं कि राज्यों के माध्यम से आपने रिसर्च करके इसको पर प्राप्त किया, इसको बनाया। आम दर्शक जो हमारे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इसको पर कैसे जाने, कहाँ मिलेगा ये आपको, आपने जो तैयार किया है
ये चीज? अभी इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हो चुकी है।
अच्छा।
और ये नेशनल जो इंडिया की गवर्नमेंट पेटेंट साइट है उस पर भी ये पब्लिश हो चुका है
जी, जी।
तो हम उसको वहाँ पे सर्च कर सकते हैं
जी 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 जी। भाई जी, जैसे दीपम भाई बता रहे हैं कि इसने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया, बचपन में इनको बहुत क्रोध आता था, फिर राज्यों का अभ्यास की, राज्य के माध्यम से इसने विजय प्राप्त कर लिया, फिर एक नई रिसर्च की, क्या इतनी शक्ति है इस राज्यों में कि इन सब भी ये सब भी किया जा सकता?
हाँ, देखिए, जिस व्यक्ति को रिसर्च करनी है
जी,
तो कि मन और बुद्धि के द्वारा ये काम होना है,
विशेषकर
बुद्धि के द्वारा
जी।
और बुद्धि की एफिशिएंसी तब बढ़ जाती है जब मन शांत होता है। अब जो व्यक्ति क्रोध करेगा उसकी तो इनर पावर बहुत नष्ट होती है, उसका मन भी बहुत भटकता है, उसका चिंतन भी बहुत निगेटिव होता है, तो उसको रिसर्च करने में देर लगेगी, मेहनत लगेगी। इसलिए हम सुनते हैं भाई एमटेक कर रहा हूं मैं, थेसिस लिखनी है, बहुत टेंशन है भाई, बहुत टेंशन है, पीएचडी कर रहा हूं और खाने को सोने को भी टाइम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मन ज्यादा चल रहा है तो बुद्धि की एफिशिएंसी डाउन हो रही है। तो दीपम भाई ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि राजयोग करते थे, अपने चित्त को शांत कर लिया, क्रोध को समाप्त कर दिया, तो वो सारी शक्तियां बच गई जो बुद्धि की तरफ डाइवर्ट हो गई, इसलिए इन्होंने एक सुंदर चीज संसार को प्रदान कर दी।
नहीं, इसने तो भाई जी राजयोग के माध्यम से तो विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन जो दुनिया में लोग हैं जो इसको नहीं जानते, वो राज्यों का अभ्यास भी नहीं करते, तो भी कई बार वो शांत रहते हैं।
हाँ, मैं उसमें दो चार चीजें कहूंगा। देखिए, कामनाओं से क्रोध बढ़ता है
जी।
अभी उसको ये तो सोचना ही होता है कि कामनाएं रखना तो अच्छी बात है, जिन्हें हम शुभकामनाएं भी कहते हैं, हम किसी के बर्थडे पर, न्यू ईयर पर शुभकामनाएं भी देते हैं। दूसरों से एक्सपेक्टेशंस तो मनुष्य को होंगी, हमारे साथ चार लोग काम कर रहे हैं, हम अवश्य चाहेंगे कि भाई ये अच्छा काम करें। लेकिन जो व्यक्ति अपनी एक्सपेक्टेशंस को रख करते हुए भी चित्त को शांत रख ले वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञानी का अर्थ ये नहीं कि कोई ईश्वरीय ज्ञान लिया हो, पर वो व्यक्ति वाइज है। तो एक्सपेक्टेशन हमारी है, मान लो एक बाप की अपने बच्चे से है कि बहुत अच्छा पढ़े, लेकिन मान लो बच्चा फिर भी 70% से ज्यादा मार्क्स नहीं ला रहा है। अब बाप समय लेता है कि भाई इसका बुद्धि का लेवल इतने तक ही है, इस पे दबाव बनाना उचित नहीं होगा। तो वो क्रोध करने की बजाय कि तुम इतने क्यों नहीं लाए, इतनी तुमसे मेहनत की, तुम पे इतना खर्च हो रहा है, हम तुम्हारे इतना तुम्हारे लिए कमा के खर्च करा रहे हैं, वो प्यार देता है उसे कि जितना इसे प्यार देंगे इसकी बुद्धि का और विकास होगा। तो एक वाइज मैन, एक समझदार व्यक्ति ये जानता है, इसलिए वो एक्सपेक्टेशंस को कम करता चलता है और चित्त को शांत कर लेता है। यही हम सबको सीखना है
जी। मैंने भी दीपम भाई का अनुभव बड़े ध्यान से सुना और उसमें मैंने एक बात देखी कि जब वो छोटे थे तो उनको बहुत गुस्सा आता था। जो उन्होंने बताया दीपम भाई ने कि उनको बहुत गुस्सा आता था, बहुत इरिटेट होते थे, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन, चिल्लाना। थोड़े समय के बाद जब ये एक क्लास में थे, इन्होंने मेडिटेशन का अभ्यास किया जिसमें इन्होंने एक बहुत गहरी बात बताई कि उससे मेरे विचारों की गति धीमी हो गई और क्वालिटी वाली हो गई। तो विचारों का और शब्दों का मैच होने लगा, गुस्से पे कंट्रोल हुआ। उससे एक बहुत बड़ी चीज की जो इनको बोलने में तकलीफ होती थी, हकलाकर बोलते थे, धीरे धीरे बोलते थे, तो इन्होंने कहा बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कि राजयोग से ठीक हो गया। राजयोग ने क्या किया, मन में शांति उत्पन्न की, विचारों की गति धीमी की, विचारों में पॉजिटिविटी आई, और उन सब का जो प्रभाव हुआ या जो इनके अंदर एक डिफेक्ट था शब्दों में, वाणी में, कि वो फ्लो से नहीं बोल सकते थे, नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते थे, वो डिफेक्ट ठीक हो गया। कितनी बड़ी बात है। अगर हम अपने चित्त को शांत रखें, हम अपने जीवन में खुशी रखें, खुशनुमा माहौल रखें, तो कितनी सारी ऐसी बीमारियों से बचा जा सकता है, लाइलाज बीमारियों से बचा जा सकता है। हम अपने को भी स्वस्थ रख सकते हैं और अपने आसपास के माहौल को भी स्वस्थ रख सकते हैं, अपने व्यक्तियों को स्वस्थ रख सकते हैं। एक चीज बहुत बड़ी तोहफे के रूप में मिल गई, तो हमारे दर्शकों के लिए इससे बड़ी और क्या बात।
बहुत अच्छा भी लग ही नहीं रहा है।
खुश रहने से, बिल्कुल खुश रहने से, शांत रहने से हमें कितनी बड़ी बड़ी गिफ्टें मिलती हैं जो हम ले सकते हैं, जिन पे हमारा हक है, हमारा अधिकार है, बशर्ते हमारा जीवन खुशनुमा हो, खुशी का माहौल बनाना हर एक की ड्यूटी, हर एक की जिम्मेदारी है कि जहां भी मैं रहूं वहां मैं खुशी का माहौल बना करके रखूं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी।
जी 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 भाई साहब, जैसे दीपम भाई ने बताया कि क्रोध पर विजय पाया जा सकता है या फिर बीमारी पर विजय पाया सकता है, एक आम इंसान, जो आम व्यक्ति जो अभी राज्यों का अभ्यास नहीं करते हैं, उनके मन इतना शांत भी नहीं है, क्या ये जरूरी है राजयोग ही सीखना तभी पाया जा सकता है कि और कुछ विधि है?
देखिए, राजयोग से तो मन की शक्तियां बढ़ती हैं, मन शांत होता है, विचारों में शालीनता आती है, बोल अच्छे होते हैं, टोटल जीवन बदलता है। अभी कोई प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, और एक साधारण व्यक्ति हो, सबकी जीवन तो वही होती है। मनुष्य का सोचने का तरीका, उसका व्यवहार का तरीका, इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है कोई व्यक्ति संसार में रहने वाला। राजयोग के बल पे से भी और अपने चित्त को वैसे भी शांत करके इस क्रोध से मुक्त हो सकता है। पहली बात तो ये है कि उसको एक सुंदर सी इच्छा होनी चाहिए। राजयोग क्या करता है कि चित्त को शांत करता है और पावरफुल बनाता है। तो जब मनुष्य का मन पावरफुल हो जाता है तो उसे छोटी छोटी बातों को सहन करना बड़ा सहज हो जाता है। लोगों में कोई सहन शक्ति नहीं, इसलिए क्रोध बहुत आता रहता है। लेकिन स्पिरिचुअली हम सभी कुछ प्रैक्टिस किया करें। पहली सवेरे उठते ही कि क्रोध पर मुझे विजय प्राप्त होगी ही, मैं हूँ विजयी आत्मा। एक सुंदर कॉन्शियसनेस अवेयरनेस संकल्प को दें, मैं विजयी हूँ, क्रोध मुझे हरा नहीं सकता, इस पर मेरी विजय होगी ही। पहले तो ये दृढ़ता, फिर मैं आत्मा हूँ, पीसफुल हूँ, शांत हूँ, क्रोध से मुक्त हूँ, मैं पीसफुल हूँ। 7 बार सवेरे उठते कर ले, मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ, मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। तो इससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे स्वीकार कर लेगा और क्रोध को जिताने में सबकॉन्शियस माइंड की बड़ी भूमिका हो जाएगी। तो मैं सभी भाई बहनों को कहूंगा, सभी अपने लिए छोटे दूसरे को नहीं देखेंगे
जी।
परिवारों में जो हमें सुन रहे होंगे वो एक दूसरे की ओर उंगली कर रहे होंगे, इसे बहुत क्रोध आता है, सुन लो ध्यान
से।
हाँ, लेकिन हम सब ध्यान दें कि हमें दूसरों को ऐसा मौका भी नहीं देना कि उनके उनका क्रोध जरा बढ़े
जी, जी।
और खुद भी ऐसे मधुर वाणी में व्यवहार करना, सम्मान पूर्वक व्यवहार करना, और स्वयं के लिए हमें ध्यान रखना कि कोई गलत व्यवहार भी करे, कुछ गलत सिचुएशन आ जाए, इरिटेट होने का कुछ समय ही आ जाए, लेकिन हमें कंट्रोल रखना है कि नो, मैं तो क्रोध मुक्त हूँ, मैं तो शांत हूँ। भगवान को कैसा लगेगा वो शांति का सागर और मेरे बच्चे क्रोध के सागर, तो हम उसकी भी इज्जत का ध्यान रखें। ऐसे यदि हम चिंतन करेंगे तो क्रोध को जीता जा सकता है। जैसे मैंने कहा, हमारे यहाँ लाखों लोग क्रोध मुक्त हो चुके हैं।
जी 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 जी। तो भाई, आपने बताया कि मैं राज्यों का अभ्यास करता हूँ। लोग जो है आज इतना भागम भाग दुनिया है, किसी पास टाइम ही नहीं राज्यों करने का, बैठ करके अभ्यास करने का। आप कैसे निकालते हैं इसके लिए समय, और हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, हम सारी दिनचर्या में जिसको महत्व देते हैं उसके लिए समय खुद ही निकल जाता है। आज हम महत्व दे रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को दे रहे हैं जिससे हमें लॉस हो रहा है। तो जिस चीज से मेरी लाइफ बन रही है, जिस चीज से मेरी एक लाइफ एक प्रैक्टिकल टास्क को फुलफिल करने की तरफ जा रही है, तो उस चीज के लिए तो हमें पहले महत्व देना बहुत जरूरी है। और आजकल का जो यूथ है, मैं देखता हूं कि कंसंट्रेशन ना बढ़ने का कारण दो चीजें हैं।
हाँ।
पहला है कि नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बना लिया
जी।
क्या सोच लिया कि सारे फर्स्ट थोड़ी आते हैं, है ना, हमारा तो पीछे बिजनेस है, हम तो चलो ग्रेजुएशन कर लें, दसवीं पास कर लें तो हम अपना कारोबार चला लेंगे। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम कभी भी पढ़ाई के साथ जस्टिस नहीं कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई को नहीं पढ़ूंगा तो फिर मेरा जो मन है वो इधर उधर भटकेगा, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से डाइवर्ट हो रहा हूँ। भले हम बाद में बिजनेस भी करें, वो मना नहीं है, लेकिन जिस चीज हमें, मेरा जीवन जिस चीज के लिए बना है, अगर हम वो नहीं करते हैं तो मेरा जीवन डिस्टर्ब होता है। और दूसरी बात क्या है, आजकल जो यूथ है या बड़े भी हैं, वो गैजेट्स को बहुत यूज कर रहे हैं। हम चेक करें सभी अभी कि हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं, क्या हमें थॉट चलते, कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई व्हाट्सएप तो नहीं किया किसी ने। तो स्टूडेंट के साथ तो बहुत हो रहा है ना, ट्यूशन भी पढ़ रहे होंगे, लेक्चर भी सुन रहे होंगे, बार बार ध्यान कहाँ जाता है, मैंने मैसेज किया था, चेक कर लू, रिप्लाई तो नहीं आ गया, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी एकाग्रता कैसे बढ़ेगी, है ना।
आजकल की युवक की बड़ी समस्या है कि उनका मन एकाग्र
नहीं होता,
बोलते रहते हैं।
मुझे इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल बात याद आ रही है, हमारे जो लेक्चर का पीरियड होता है वो 40 मिनट्स का क्यों होता था, क्योंकि कुछ समय पहले चेक किया गया कि एक स्टूडेंट की एकाग्रता 40 मिनट की है।
अच्छा।
इसलिए पीरियड सेट कर दिए 40 मिनट, लेकिन अभी जो लेक्चर पीरियड है वो 40 मिनट का ही है, लेकिन जो अभी लेटेस्ट रिसर्च हुई उसमें बताया कि स्टूडेंट की एकाग्रता 40 मिनट से कम होकर 8 मिनट पे आ गई। हम ये गैजेट्स मेरे लिए जस्ट एक साधन है, इसके लिए मैं अपनी रीजनल लाइफ से दूर नहीं जा सकता।
नहीं, थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ कि आपने बताया कि मैं राज्य के लिए समय निकालता हूँ, फिर आप पढ़ाते भी हैं, फिर आप पढ़ते भी हैं, तो आप फिर कौन सा समय निकाल लेते हैं बीच में?
इसके लिए वही बात, जो चीज दुनिया 3 घंटे में 4 घंटे में करती है, वो चीज हम राज्यों के अभ्यास से, क्योंकि एकाग्रता बढ़ गई, तो आप बहुत बड़े बड़े कार्य को बहुत कम समय से सहज ही कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम राजयोगी हैं तभी ऐसा कर रहे हैं, दुनिया भी कर रही है, लेकिन हम बहुत सहज कर रहे हैं और अपनी लाइफ के वैल्यूज को मेंटेन रखते हुए कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो आज यूथ के लिए यही मैसेज है कि हम इधर उधर के गैजेट्स, इधर उधर के साइट्स, गलत साइट्स पे या इधर उधर की पार्टीज या सिनेमा को कम महत्व दे करके अगर हम कुछ समय अपने लिए निकालते हैं तो हमारी लाइफ बहुत एक अच्छी लाइफ बन सकती है और हम दुनिया के लिए एक एग्जांपल सेट हो सकते हैं।
जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात आपने हमारे आज दर्शकों के लिए रखा कि सचमुच अगर हम जिस चीज को महत्व देंगे, जैसे आपने बताया कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है, अपने मन को एकाग्र करना है, तो थोड़ा सा राज्यों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए समय देना पड़ेगा, उसके महत्व को समझना पड़ेगा। तो हमारे जीवन का विकास हो सकता है और जो हम चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आप तीनों स्टूडियो में आए भाई जी, दीपम भाई, गीता बहन, पुनः आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, सचमुच आज तो हमारी जैसे बुद्धि का ताला ही खुल गया कि अगर हम महत्व दें कि जीवन रूपी यात्रा में हम क्या चाहते हैं, कैसे अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, कैसे अपने जीवन का विकास चाहते हैं, तो थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। आपको अपने विचारों के ऊपर, उसकी गति के ऊपर, उसकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना होगा। और आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन अपने अंदर की चेकिंग करनी पड़ेगी, मैं किस चीज को ज्यादा महत्व दे रहा हूं। अगर इस बात को समझ जाएंगे तो सचमुच आपका जीवन का सफर बहुत आनंद हो जाएगा, आपके जीवन में सुख शांति आने लग जाएगी, आपका मन एकाग्र हो जाएगा। आगे भी इन विषय पर चर्चा करते रहेंगे। आप सबके लिए आज पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।